Thank you. श्री हरि भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव स्वर्णमाई की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। दाई गौर विमान देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
निस्संदेह अजया बकरी के साथ
उपलब्ध होया कुए से मिली कालम समय के लिए बहुत इतम दीर्घ काल बदरे ना नहीं अद्य अभी आज तक पुष्टि संतुष्ट होता है। अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार से है, हे प्रिय जब बकरे के अंडकोश जुड़ गए तो उसने कुएं से मिली बकरे के साथ संभोग किया। यद्यपि अनेकानेक वर्षों तक भोग करता रहा किंतु आज भी वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाया है। जब कोई अपनी पत्नी के स्नेह से बदतर होता है तो वो संभोग वासनाओं के भावना से अनुरक्त रहता है, जिसे जीत पाना अत्यंत कठिन है। अतएव वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि वे स्वेच्छा से ही अपने तथाकथित घर को छोड़कर जंगल में चले जाए। पंचाक्षोध्वम वनम भजे, मनुष्य जीवन ऐसी तपस्या के लिए है। घर पर संभोग को स्वेच्छा से त्याग कर और जंगल में जाकर भक्तों की संगति में आध्यात्मिक कार्यों में लगकर मनुष्य मानव जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमयो विश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा मे स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृन्द। हरे
अपनापन का जो अहंकार होता है कितना बड़ा होता है, देवयान को लगा कि मैं ब्राह्मण की कन्या और खतरे कर ये हमारे उपदेश करने के लिए तुमने बहुत कठोर शब्दों में उसका अपमान किया, बहुत कठोर शब्द। तो शर्मिष्ठा भी कुछ कम नहीं थी, शर्मिष्ठा भी चलती थी कन्या की चतरानी स्पाइडर्स। तो उसने कहा कि तुम ब्राह्मण लोग जो हो पुरोहित रूप में हमारा दरवाजे पर खड़े रहते हो, जो दक्षिणा देते तुमको तुम्हारा चरितार्थ चलता है। इस तरह से भव्य भयंकर कठोर शब्दों का आदान प्रदान हुआ जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी अहंकारवश अपने अपने स्थिति के गर्व के वश उन्होंने एक दूसरे को सहेलिया होने पर भी अपशब्द का उच्चारण किया। और फिर जैसे कुछ बात वाद विवाद शुरू होता है, पहले टेम्परेचर एक होता है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है और बढ़ता है और बढ़ता है। इतना बढ़ गया कि क्षत्राणी जो कन्या थी उसने ब्राह्मण कन्या को उठाया और कुएं में फेंक दिया, चली गई करके। इतनी भयंकर घटना के एक सीधी सी बात, कपड़ा गलती से पहन लिया, सॉरी बोल के खत्म कर देते हैं। इतना झगड़ा बढ़ गया बात बात पर, उसको कुएं में फेंक दिया और वो नग्न अवस्था में थी, उसने कपड़े नहीं पहने थे, ऐसे झगड़ा चल रहा था। कुछ देर बाद वहां से एक राजा ययाति शिकार खेल रहे थे, घूमते घूमते आ रहा है, उसको प्यास लग रही है। तो जब प्यास बुझाने के लिए वो जब कुएं में झुकता है पानी लेने के लिए, देखता है कि कन्या नग्न अवस्था में कुएं का अंदर पड़ी है। तो तुरंत वो उसके बाद शरीर को ढकने के लिए अपना उत्तरीय वस्त्र जो पहनता है उसको पानी में अपने आप को लपट लेती है और उसको वो अपनी बाहों से उठाकर बाहर लाता है। पुराने जमाने में ऐसा नियम था कि मन से भी कोई कन्या किसी को अगर विचार करे किसी के बारे में, पुरुष के बारे में, तो उसको उसके साथ विवाह करना पड़ता है। या अन्य तरीके से अगर उसके मन में किसी पुरुष का विचार आया तो दूसरा कोई पुरुष उससे विवाह नहीं करेगा, कि किसी को ऑलरेडी मन में उसने विचार कर लिया है। इतनी समाज की स्थिति श्रेष्ठ थी उस समय। अभी तो मन जो होता है ना पुरुषों का और स्त्रियों का, वो दोनों रेलवे के थर्ड क्लास डिब्बे की तरफ होते हैं, उसमें कई आदमी चढ़ते कई आदमी उतरते, कोई फिक्स नहीं है। हजारों आदमी को बारे में विचार करके सब कुछ मन में भोग करके हो गया है और फिर शरीर से भोग करना हो जाता है और फिर 10-15 लोगों का संबंध होने के बाद मन का शरीर का भावना का फिर किसी 15वें आदमी का विवाह किया जाता है और विवाह के बाद में भी अनंत लोग उस डिब्बे में चढ़ते रहते हैं उतरते रहते हैं। ये हमारे कलयुग की स्थिति है। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ से उसको उठाया तो उसने कहा कि अब तुमने मुझे स्पर्श कर दिया है, मेरी जिंदगी को बचा लिया है और तुम्हें मेरे पति हो। हालांकि मैं ब्राह्मण की कन्या हूँ लेकिन मुझे पहले ही कच्छ नाम के एक व्यक्ति ने श्राप दे रखा है, क्योंकि मैंने उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया तो उसको श्राप दिया कि तुम्हें ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। ये भी निश्चित है कि मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा और तुम क्षत्रिय हो, तुमने मुझे छू लिया है तो स्वीकार कर लो, कर लिया स्वीकार। लेकिन इसके बाद में जब ये सब हादसा हुआ तो उसके बाद में उसके मन में जो गुस्सा था कि मुझे शर्मिष्ठा ने जल में फेंक दिया था, तो जागरूक था तो वो गुस्से को लेकर पिताजी के पास गया और कहा कि ये शुद्र क्षत्रियों की कन्या ने मुझे चांद से मारने के लिए कुएं में फेंक दिया, दंड दे दो। पिताजी भी अपने पुत्री से आ सकते, पुत्री का जो अपमान हुआ उसको सहन नहीं कर पाए। तो जो वृषभध्वज नाम के राजा थे उसकी कन्या थी शर्मिष्ठा, समझ गए जब समझा कि शर्मिष्ठा ने कथा बताई पति पिता को अपने कैसे ऐसे हुआ, तो समझ गए वो कि शुक्राचार्य हमको नष्ट कर देंगे श्राप देकर। तो वो खुद ही अपनी कन्या को लेकर माफी मांगने के लिए शुक्राचार्य के पास गए। शुक्राचार्य जो श्राप देने वाले उसके पहले चरणों में गिर गए, बोले माफ करना हमसे जो भी कुछ है स्वीकार करना, हम क्षमा चाहते हैं, हमारी कन्याएं बहुत नादान हैं, उनको श्राप मत देना और हम आपसे वादा करते हैं जब भी देवयानी का विवाह होगा तो ये कन्या मेरी उसके साथ में दासी के रूप में चली जाएगी, पहले ही बोल दिया, मतलब गुस्सा ठंडा कर दिया। तो स्वीकार कर लिया, श्राप नहीं दिया। यथावकाश जब देवयानी का विवाह ययाति से हुआ तो ययाति के विवाह के पश्चात दासियों के रूप में शर्मिष्ठा अनंत हजारों दासियों के साथ में एक तुच्छ दासी बनकर उसके घर पे चली गई। शुक्राचार्य बहुत होशियार थे, उन्होंने कहा कि देखो आपने तो कह दिया है कि हम इसको दासी के रूप में भेजेंगे, लेकिन पति को वो बोलते हैं तो कभी भी दासी के साथ में आप संबंध नहीं करना है, बस सेवा लेना है, बस उतना ही ठीक है। अवकाश वो दासी तो क्या हुआ, अल्टीमेटली ऐसा होता है ना कि जो हमारा स्थायी भाव होता है वो कहीं भी छूटता नहीं है। स्थायी भाव तो स्थायी भाव होता है, दासी तो होती है जन्म से तो फिर वो दासी रह गई, लेकिन जो क्षत्रियाणी है उसको अगर पृथ्वी नदी से दासी बनाकर भेज दिया है तो वो थोड़ी ऐसी दासी के रूप में रहेगी, वो तो अपना तेवर दिखाई। तो जब दिव्यानी गर्भवती हुई तो इसकी भी इच्छा हुई कि हमको भी गर्भवती होना चाहिए, कोई बालक चाहिए, तो उसने एकदम बिना डरे हुए राजा को कहा, राजा आपसे हमें पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। अभी धर्म कहता है कि जब क्षत्रिय उस जमाने के सही क्षत्रिय, आजकल वाले दिन होंगी नहीं, क्षत्रिय धर्म का वर्णन थोड़ा भगवान ने भगवद्गीता में दिया है, उसके अनुसार जो सही क्षत्रिय है उसके लिए ऐसा नियम है कि अगर किसी भी स्त्री ने उसको कभी भी कहीं पर भी कुछ विनती किया संबंध के लिए तो उसको को नकारना नहीं चाहिए, तो नकारना उसके लिए अपराध माना है। तो वैदिक धर्म के अनुसार स्वीकार किया उसको और वो गर्भवती हो गई। जैसे ही वो गर्भवती हो गई देवयान को बहुत क्रोध आया, अरे दोबारा दासी रानी बनने का प्रयास कर रही, उसको मेरे पिताजी ने दंड दिया था दासी बना के भेजा था, वो राजा की रानी बनने का मेरे इक्वल बनने का प्रयास कर, फिर पिताजी के पास। अब पिताजी ने शुक्राचार्य ने शाप दे दिया उसके पति को कि तुम इतने शरीर से सुख के लिए आसक्त हो तो तुम बूढ़े बन जाओ, अभी मैं आपको साथ देता हूँ कि आप वृद्ध बन जाओगे तो सारा तुम्हारा जो भोग लेने की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी, तुम्हारे अंडकोष जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा, एक क्षण के अंदर राजा जो है ज्ञाती एकदम वृद्ध हो गए, एकदम बूढ़े अवस्था में थे, जवान अवस्था में थे एकदम बूढ़े हो गए। तो राजा ने कहा मैं तो अभी जवान हूँ, अभी तो मेरा पर पहली पत्नी जो है वो गर्भवती है, तो बच्चा भी नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारा संसार बाकी है, टाइम बाकी है, मेरे भोग लेने की इच्छा भी बाकी है, अभी बुढ़ा हो जाऊंगा तो कैसे चलेगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, बहुत जिंदा है दो चरणों के लिए बूढ़ी अवस्था में जर्जर अवस्था में। तो शुक्राचार्य ने दया करके कहा कि अगर किसी ने तुमसे तुम्हारी बुढ़ापे को वृद्धत्व को स्वीकार करने का प्रण ले लिया है, किसी ने कहने का हम ले लेंगे तो उसकी जवानी आपको मिल सकती है, और किसी यंग व्यक्ति को तरुण व्यक्ति को आपका बुढ़ापा स्वीकार करेंगे तो फिर आप दोबारा यौवन की अवस्था को प्राप्त करते हुए वो ले सकते। अभी कौन देगा ऐसे व्यक्ति को, मतलब जिसका वृद्धत्व आ गया है उसका वृद्धत्व कौन लेने को तैयार हो, क्योंकि जो यौवन का समय होता है वो जीवन का बाहर का समय माना गया, वसंत ऋतु माना गया, उसमें हर चीज बहुत सुंदर लगती है, उत्साह रहता है, शक्ति रहती है, हर वस्तु की भोग लेने की शक्ति रहती है और हर चीज़ अच्छी लगती है, सारा विश्व जो है बहुत आनंद में लगता है, मन की अवस्था है जो शरीर की अवस्था के अनुसार लगता है, यदि शरीर की अवस्था आगे बढ़ती है तो फिर ये सब बाहर जो है वो नष्ट होने लगती है, ये भौतिक दुनिया का स्वभाव है, कोई भी चीज़ जो है वो टिकती नहीं है, आज है तो कल नहीं, किसी भी चीज़ को अगर हम समझेंगे कि ये मेरा है और ये हमेशा रहना चाहिए तो वो चीज़ कभी भी वैसे रहती नहीं है, काल के प्रभाव से वो अपना जो आनंद की जो शक्ति है उसके अंदर वो समाप्त हो जाती है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है इस दुनिया में जो काल के प्रभाव में होते हुए भी अपना यौवन अपना आनंद की स्थिति बनाए रखे, नथिंग रिमेंस एज इट इज, काल इतना प्रभावी है तो काल के प्रभाव से सारी चीज़ों का जो महत्व है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, राजा की शक्ति, राजा का भोग, राजा का गौरव, राजा की कीर्ति सब काल के साथ समाप्त हो जाता है, कोई विजयी है तो काल के साथ पराजय हो जाता है, इतनी कहानियां है विश्व में, तो कौन लेगा उससे अपना बुढ़ापा, तो फिर अपने पुत्रों के साथ जाता है, पुत्रों से बोलता है कि आप में से कोई मुझे अपना यौवन देगा, इतनी कोई जो भोग लेने की इच्छा है ना, वो कहते हैं शास्त्र में लिखा है कामा पुराणा न भयम न लज्जा। शरीर उसका जर्जर हो चुका है, तो शरीर के अंदर कोई भोग लेने की अभी शक्ति नहीं बची है, लेकिन सूक्ष्म देह जो है वो बुढ़ा नहीं है ना, वो तो मन है, मन कभी बुढ़ा नहीं होता है। हमने भी देखा है हमारे कॉलेज के दिनों में 90-90 साल के पेशेंट जो आते हैं उनको हाथ ऊपर उठाने की शक्ति भी नहीं है, और इतनी जर्रे हो, क्या कहते हैं जर्रियाँ जो जर्रियाँ जर्रियाँ वो पूरे ऐसे हाथ में ऐसे भरे हुए हैं, चेहरा भी लटक रहा है, सतरंग भी लटक रही है, फिर भी उसकी नज़र जवान नर्स के ऊपर से हटती नहीं है। हमने देखा है अपने आँखों से इतनी खराब अवस्था है कि केवल वो बूढ़ा व्यक्ति जो है केवल जवान नर्सों को हमेशा वार्ड में देखते रहता है, ICU के वार्ड में, और 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर भी आखिरी दम तक वो जवान अवस्था को देखते रहता है। तो ये जो स्थिति है ये बहुत घृणनीय है, बहुत मतलब घृणा जैसी है कि जिस शरीर के अंदर बदबू है, मल है, मूत्र है, तो जब जवान होता है तो चलो शास्त्र के अनुसार भी हमको थोड़ा भोग लेने का लाइसेंस दे देता है, लेकिन शास्त्र कहता है कि जब बुढ़ापा आता है तो हमको भगवान का भजन करना है, लेकिन जवानी में लगी हुई जो बुरी आदत है वो तो बुढ़ापे तक साथ देती है, और समय के साथ में सब शक्तियाँ खत्म होने के बाद भी मन जो है वो और भी भोग लेने का प्रयास करते रहते। तो आप सोच सकते हैं कि एक राजा जिसने 5 पुत्र को जन्म दे दिया है, 1 पत्नी से 2, 1 पत्नी से 3, मेरे ख्याल से 3 और 3 तो 1 पत्नी का पुत्र है यदु और दूसरे का सॉरी पहले पत्नी से 5 पुत्र हुए सर अर्यति यदु और दूसरे पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, उसमें एक है पुरु। तो एकदम निर्लज्ज तरीके से राजा अपने जवान बेटे के पास जा रहा है, इसका तो विवाह भी नहीं हुआ, उसको कह रहा है कि मुझे अभी बहुत भोग लेने की इच्छा है, क्या तुम मुझे भोग लेने के लिए अपना यौवन दे सकते हो क्या? मतलब कितनी घिलौनी स्थिति है, ऐसे लव शब्द जो है वो अपने बच्चों के सामने उच्चारण करना कितनी घिलौनी स्थिति है। लेकिन काम वासना आपका जो वेग होता है ना इतना भयंकर होता है कि कामा पुराना जो काम के लिए आतुर हो गया है उसको ना लज्जा होती है ना भय होता है। शकुंतला की वैसी कहानी, कामातुर होकर जंगल में भाग गई, बीच जंगल में, और उसको पूछा गया था कैसे भागे तुम बीच में, तो जंगल के पशु हैं वहाँ पर इतने सारे घनघोर अवस्था है, अगर पशु आ सकते हैं तो क्या क्या नहीं हो सकता है अंधेरे की घनघोर अंधेरे में, फिर भी तुम कैसे भागे रात को, डरने लगा तुम्हें? बोले थोड़े मन में कुछ भी नहीं था, आप थे जैसे आपके लिए मैं जंगल तक भाग गई, मतलब क्या कामा पुराना न भय न लज्जा, जब काम से आदमी आतुर हो जाता है तो भय नष्ट होता है और लज्जा भी नष्ट होता है। एक होती है निर्भयता भक्तों की, जो भक्तों भगवान के चरणों में शरण प्राप्त करने से निर्भय हो जाते हैं, वो दिव्य निर्भयता है, ये निर्भयता जो है बहुत खराब निर्भयता है, बेटा ऐसे भय से हमको लिप्त होना चाहिए, ऐसा जिस तरह का भय जो है किसी व्यक्ति के पीछे कामा तो होना, इसको हमको भय लगना चाहिए, डर लगना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे हमेशा कि हमको माया से हमेशा डर के रहना चाहिए, एक डर जो है जायज है, एक डर जो है वो हर एक के मन में होना चाहिए कि माया से हमको डरना चाहिए, दैट इज अ बोनाफाइड फियर दैट वन मस्ट हैव। तो यदु कहता है, यदु को पता था कि उसी के वंश से कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है, तो यदु ने कहा कि हम नहीं कर सकते, अस्वीकृत कर दे उसको, फिर वो हर बच्चे को पूछता है और सब ना कह देते उसको, और एक ही होता है वो बच्चा उसका गुरु, वो उसकी इस विनती को स्वीकार करता है और खुद बुढ़ा हो जाता है और अपने पिता के लिए यौवन देता है, और उसको बुढ़ा बना के ये पिता जो है वो अनंत काल तक अपनी पत्नी मतलब उसकी माता के साथ में भोग करता है, और भी अन्य कन्याओं के साथ माता पत्नियों को सही क्या सखियाँ दासियाँ जो भी है, ऐसा भयंकर वर्णन आता है। उसने कई समय तक लिखा है यहाँ पर बहु बहुत थम कालम बहुत तुम अनंत काल तक उसने बहुत समय तक भोग लिया, लेकिन उसके पश्चात भी उसको संतुष्टि नहीं हुई। सबसे सोचने वाली बात यह है, हमारे लिए क्या सीखना है भागवत में से? उसके पास में हर प्रकार की सुविधा थी। जब राजा कोई भोग लेने का प्रयास करता है तो राजा को कोई बिस्तर नहीं मिल रहा है, अरे कोई पंखा नहीं है उसके पास, उसके बाद सुगंधित द्रव्य नहीं है, उसके बाद में अच्छा खाना नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। उसके बाद अच्छे अच्छे खाने के व्यंजन है, अच्छे अच्छे ऊंचे सुगंधित द्रव्य है, अच्छे अच्छे फूलों की व्यवस्था है, अच्छे नरम नरम बिस्तर की व्यवस्था है, एकांत है, अच्छा वातावरण है, सब प्रकार का बगीचा है, भवन है, जहाँ जहाँ व्यवहार करना है, हर प्रकार के साधन जो हमको भोग लेने के लिए चाहिए और उसके पास उपस्थित है। तो ऐसे सब प्रकार के भोगों के साधन को लेकर सर्वश्रेष्ठ तरीके से उसने भोग लेने का प्रयास किया अनंत काल तक, वो भी एक स्त्री से नहीं, अलग 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 स्त्री से, वैरायटी। लेकिन अंत क्या हुआ उसका? उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं। जो संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उसने भिक्षा मांगी थी शुक्राचार्य से, संतुष्ट नहीं हो मैं, मुझे भोग लेना है, संतुष्ट होना है मुझे, इससे कृपा करके यवन लौटा दो। वो यवन ऐसे नहीं तो वैसे मिल गया उसको अलग तरीके से, लेकिन इतना सब प्रयास करने के बाद भी, बहुत समय के बाद भी उसको उस संतुष्टि का अनुभव नहीं जो उसको चाहिए थी। तो अल्टीमेटली क्या है, भोग से हम क्या चाहते हैं? हम भोग समाधान चाहते हैं, संतुष्टि चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से भगवान को भूल कर लिया हुआ जो भोग है उससे जीव को संतुष्टि प्राप्त नहीं है, चाहे वो कितना भी दीर्घ क्यों न हो, कितना भी विशाल क्यों न हो, कितना भी लुभावना क्यों न हो, कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन भगवान को भूल कर अगर वो उस भोग को लेना चाहता है तो कभी भी उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये प्रिंसिपल जो है श्रील प्रभुपाद जी ने हमको समझाने का प्रयास किया अमेरिका जाने के बाद लोगों को, आप लोग जो अमेरिका में रहकर आपके पास इतनी तकनीक है, इतनी सुविधा है, बटन दबाने पर बहुत सारा चीज उत्पन्न होता है ना, सब कुछ ठंडा करने के लिए साधन है, गर्म करने के लिए साधन है, उड़ने के लिए साधन है, धोने के लिए साधन है, देखने के लिए क्या चाहिए आपको, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप लोग आत्महत्या कर रहे हो, ड्रग ले रहे हो, हाँ क्या बेकार के कार्य करते रहते हो, और सबसे ऊपर आपके पास चलो सब कुछ करने के बाद ये संतुष्ट होते तो संतुष्ट भी नहीं हो आप, क्योंकि आपके समाज का जो बलात्कार और जो रेप और जो दगैती और ये ड्रग एडिक्शन और आत्महत्या कोई संतुष्टि का प्रमाण नहीं है, संतुष्टि का लक्षण नहीं। कभी इसको गर्व से कहे कि हमारे समाज में 50% लोग सुसाइड करते हैं तो बहुत दुखी बात है, संतुष्ट समाज ऐसा नहीं करता है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लोग भगवान को भूल कर इस भोग को लेना चाहते हैं, राम को भूलकर सीता का भोग लेना चाहते हैं, आप रावण बनना चाहते हैं। तो रावण को भी संतुष्टि थी क्या? उसके अंतपुर में कितनी सुंदर सुंदर रानियां थी, उसको बताया भी था महाराज ने कि महाराज आपके अंतपुर में तो अनंत रानियां है, उसमें अनुराग कीजिए महाराज, कि सीता के पीछे मत जाइए, तो आपका गोला है वो तो जला के भस्म कर देगी आपको, आपके वंश को नष्ट कर देगी। फिर भी वो संतुष्ट था क्या? समझाया गया उसको, शास्त्र के अनुसार समझाया गया, नीति के अनुसार, लॉजिक के अनुसार, सबके अनुसार समझाया गया उसको, फिर भी जो भोग से लिप्त होता है, कौन सा भोग? जो भगवान को छोड़कर करने का प्रयास करने का जो भोग है जिससे वो लिप्त रहता है, वो आदमी की दिमाग जो है वो भ्रष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि जो है माया अपृत ज्ञान, जो सारा सार ज्ञान है उसको उसकी बुद्धि खो बैठती है। फिर कितना भी अगर उसको काउंसलिंग किया गया फिर भी उसको वो दिमाग में प्रकाश नहीं आता है उसके। तो सबकी जड़ क्या है? भगवान को भूलकर भोग लेने का प्रयास। अभी हम तीसरे स्कंध का 22वें अध्याय का तथा हमारे हॉस्पिटल में सवेरे की प्रार्थना में चल रहा है, बड़ा भाग्य लोगों का सुबह उनको सभी कर्मचारियों को सुबह भागवतम सुनने को मिलता है 7 मिनट के लिए। उसमें श्लोक आया था पिछले हफ्ते में, उसका ये वर्णन था उसके अंदर कि अगर भगवान की भावना में रहते हुए अगर कोई भोग लेता है तो वो भोग जो है उसको भौतिक दुनिया के बंधनों में बांधता नहीं। इसलिए कहा गया प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि अगर भोग लेना है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि चार जो लौकिक पुरुषार्थ बताए गए हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो काम भी है, इंद्रियों का भोग भी उसमें आता है, लेकिन पहले धर्म आता है ना, पहले धर्मों के नियम का पालन करना आता है, फिर अर्थार्जन आता है, और फिर उसके साथ में थोड़ा बहुत जो लेजिटिमेट जायज जो भोग है ले सकते हैं, और फिर उससे बाद में मोक्ष की प्रवृत्ति विरक्ति आ जाती है। तो भगवान के भावना में रहकर अगर हमारे जीवन में कोई भोग आते हैं तो उनको भोगना गलत नहीं माना गया है। जैसे हमारे राजा युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज का उदाहरण देखिए, भगवान स्वयं कहते हैं कि 36,000 साल तक तुम ऐसे लोक पे रहोगे जो इंद्र के पास भी मुमकिन नहीं है। केवल काम भोग की बात नहीं कर रहे, हर प्रकार के भोग की बात कर रहे, वो सब कुछ वहां पर होगा जिसके इंद्र के दरबार में भी मुमकिन नहीं होगा। वो ऐसा सुख, ऐसा भोग आप 36,000 साल तक भोगोगे, लेकिन क्योंकि आप मेरे भक्त हो, धर्मशील हो, धर्म परायण हो, इसलिए इस भोगों की वजह से आप आसक्त नहीं होगे, मेरा ध्यान नहीं हटेगा आपका, मेरी स्मृति नहीं हटेगी, हमेशा मेरी स्मृति में रहोगे, और इतना सारा भोग लेने के पश्चात भी आप इस विश्व के एक भी वस्तु में आसक्त नहीं होगा और अंत में मेरे धाम में पहुंचो। यह है भगवत भावना का परिणाम। भगवत भावना में रहकर अगर भोग लेने का प्रयास करेंगे तो उसको लिप्त नहीं हो जाएगा। और कैसे भोग बताया गया है कि जो धर्म के अनुसार, अगर गृहस्थ जीवन भी जीना है धर्म के नियम बताए गए, अगर आपको भोजन भी करना है उसके भी नियम है, मतलब भगवान को भूलकर आदमी मांस खाएगा और भगवान को याद करके वो प्रसाद खाएगा, खाना दोनों को ही है, भोगी को भी है और भक्त को भी है, लेकिन भक्त जो है वो भगवान को लहसुन प्याज मटन मांस को छोड़कर जो शुद्ध अन्न है उसको भगवान को लिए बनाकर प्रेम से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में बड़े प्रेम से ग्रहण करेगा तो उसकी जो भूख की लालसा है वो संतुष्ट हो जाएगी और आत्मा भी संतुष्ट हो जाएगी। और उसको अगर विवाह करना है तो वो एक स्त्री के साथ विवाह करेगा, वैष्णव के आशीर्वाद से गृहस्थी बनाएगा, उसी के साथ संबंध करेगा, संतति उत्पन्न करेगा, उस संतति को भगवान के रास्ते में रखेगा, उन लोगों के लिए प्रोविजन्स प्रोवाइड करेगा, धनार्जन, कपड़ा लत्ता, भोजन, विद्या, उनका जीवन भगवान के रास्ते में रखे रखने का प्रयास करेगा और धीरे धीरे व्यक्त हो जाएगा। और उस प्रक्रिया में फिर वो घर का भी आनंद लेगा, नरम बिस्तर का भी आनंद लेगा, अच्छे भोजन का भी आनंद लेगा, यात्रा भी करेगा, सफर भी करेगा, अच्छे वस्त्र भी पहनेगा, लेकिन सब भगवान के भक्ति के नियमों के दायरे के अंदर बद्ध है तो वो सुरक्षित है। लेकिन जब वो भगवान के भक्ति के नियम के बाहर चला जाता है तो फिर वो माया का भक्ष बन जाता है। माया ऐसे जो है ना, वो एकदम जंगली जानवर की तरह रेडी है, कब भगवान के बंधन के बाहर आदमी आएगा तो उसको तुरंत हड़प कर देगा। क्या क्या कहा है, भगवान के बंधन से मुक्त होकर मैं झपटूंगी उसको। माया का झपटना जो है बहुत भयंकर होता है, ये अवस्था जो है ना बहुत हमारे लिए बहुत उपदेशक अवस्था है कि ऐसी अवस्था कभी भी हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। अपने बेटे के सामने लाचार होकर पिता जो है वो भोग की भीख मांग रहा है, इससे घृणा अवस्था क्या हो सकता है। हमको अभी भी ऐसा आना चाहिए कि अवस्था ऐसे तब होगी जब हम भगवान को छोड़कर उन भोग लेने का प्रयास करें। इसके जीवन में केंद्र स्थान में भगवान है, कम से कम बुद्धि के स्तर पर समझ कर वो व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा, एटलीस्ट ऑन द इंटेलेक्चुअल लेवल कि मुझे लगता है करना चाहिए, बहुत सारी सुंदर चीजें दिखाई पड़ रही है, लगता है सबके साथ संभोग करना चाहिए, लेकिन बुद्धि कहती है जो भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर चुके हो कहते नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सही नहीं गलत है। मुझे लगता है कि सबको देखना चाहिए अच्छी अच्छी वस्तुओं को, सब भोग की वस्तुओं, कम से कम नेत्रों से क्यों ना हो भोग लेना चाहिए, लेकिन दिमाग कहता है जो भगवान का ज्ञान समझ चुका है नहीं नहीं करना चाहिए। तो अंत में तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या लिया है, तपस्या, तो वो दिव्य पुत्र का मनुष्य जीवन किसी ने क्या लिया है, तपस्या करने के लिए। भोग लेते हुए भी उस भोग से बाहर पड़ने का जो प्रयास है वो तपस्या करने के लिए भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है। बाकी कुत्ते बिल्ली के जीवन में कोई नियम नहीं है। कुत्ते बिल्ली तीर्थ यात्रा नहीं करते, तीर्थ यात्रा भगवत प्रवचन भगवत पूजा आरती ये सब कुत्ते बिल्ली के लिए नहीं होती, पंछी बिल्ली अलग योनि के लिए नहीं होती, उनके लिए कोई नियम नहीं। केवल एक ऐसी एक भाग्यवान योनि मनुष्य की है उसके लिए नियम है कि ये जीवन में भोग लेने की भी सुविधा है, लेकिन सबसे बड़ी सुविधा जो है इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर भगवान धाम में जाने की सुविधा इस यंत्र में उपलब्ध है। और अगर इस सुविधा को वो जीव मनुष्य जीवन में आने के बाद में भी उपयोग नहीं करता उसका, तो दोबारा उसका निचले योनि में जाना निश्चित है। फिर निचले योनि में कोई उसको पूछता नहीं है क्यों ऐसा कर रहे हो। हमने कई बार देखा है हमारे आंखों से कि बकरे का बच्चा माता के स्तन से दूध पीता है और कुछ ही मिनटों के बाद में उसी माता से संभोग करता है, ये हमने अपने आंखों से देखा। उसे कहते जानवर का जीवन, इसमें कोई नीति नियम नहीं, लेकिन मनुष्य जीवन में नियम है बहुत सारे। तो अगर हम मनुष्य जीवन में रहते हुए इन तत्वों को नहीं समझेंगे, इन नियमों को नहीं समझेंगे, इन नियमों को नहीं जीवन में उतारेंगे, तो अगला जीवन जानवरों की योनि में निचली योनि में निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो आपको पसंद है वो मिलेगा। अगर आपको ये सब नियम पसंद नहीं है तो फ्री होना चाहिए सब कुछ, कोई शादी वादी का बंधन नहीं होना चाहिए, कोई वो मैरिज और वो सब उसका तलाक वलाक का नियम कुछ नहीं होना चाहिए। जब मर्जी आए किसी भी स्त्री पुरुष का संबंध होना चाहिए। ऐसे लोगों की बंधन धारणा चल रही है आजकल कॉलेजों में और समाज में। अचानक एक न्यूज आया कि अमेरिका में डिवोर्स रेट बहुत कम हो गया, दो रे वाह समाज गलत ही कर रहे हैं। कारण ये नहीं था, इसका कारण ये था कि डिवोर्स जब तब होता है जब शादी होती है, शादी करना बंद करते डिवोर्स कैसे होगा, इसलिए डिवोर्स का रेट कम हो गया। क्योंकि लोग शादी के बिना रहने लगे, 10-10 साल तक 5-5 साल के बच्चे भी हो गए तो स्कूल में जाने लगे, लेकिन विवाह नहीं किया। 10 साल के जब बदल गया तो फिर वो अलग हो गए, तो अलग होने का डिवोर्स नहीं कहते, तो शादी नहीं हुई तो बंधन ही नहीं है। ये जानवर का जीवन है, याद रखना इस बात को, ये एडवांस जीवन नहीं है। लोग सोचते हैं डेटिंग करना, अलग अलग स्त्रियों के साथ में अलग अलग हफ्ते के एंड में संभोग करना और घूमना फिरना बहुत एडवांस है, बहुत क्या कहते हैं उसको मॉडर्न विचार है, क्या उसको आधुनिक विचारशाली लगता है मुझे। लेकिन ये जानवर की जीवन शैली की ओर अधोगति उनकी प्रगति नहीं है। सोचते क्या बंधन में घुसना है सब, ये एक औरत का तो जिंदगी भर बांध कर अपने अपने आप को, मजा नहीं आ रहा है उसके झगड़े हो रहे हैं, ये मतभेद हो रहा है, इसका सब प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब अच्छा नहीं है। सब ऑर्थोडॉक्स पुराने विचार शैली है कि छोड़ना चाहिए, एकदम फ्री लाइफ जीना चाहिए। लेकिन ये फ्री लाइफ का मतलब क्या है, जानवर निचली होगी पंछी कीड़ा मकोड़ा कीटक मछली जानवर ये उनका जीवन शैली है, जिसमें कोई मतभेद कोई विचार से नहीं उसके अंदर की माता और बहन है या कोई कन्या है, केवल नर मादी का रिश्ता होता है इसके अंदर, दो ही अंडरस्टैंडिंग होता है, एक नर और एक मादी, बस बाकी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। मनुष्य समाज में बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग है, माता है बहन है कन्या है और बहू है भाभी है, बहुत सारे नाम दे के रखे रिश्तों को, वो मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए भाभी और कोई ननद नहीं होती है, केवल नर और मादी होती है, केवल भोग लेना उसका कर्तव्य बस। तो इस तरह का जीवन जीना यानी जानवर की जीवन की ओर अपनी प्रगति करना निश्चित रूप से, और जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं निश्चित रूप में उनके लिए बॉडी तैयार है जानवरों की, जिस प्रकार से वो अपना अभी काम कर रहे हैं उसके अनुसार अनुरूप भगवान उनके लिए बॉडी बना रहे हैं और दी जा रही है निश्चित रूप से। लेकिन हमको ये सब समझना, हमको भागवत सुनने को मिल रहा है कि हमारा भाग्य है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद में हमारा भागवत के साथ संपर्क हो रहा है, उसकी वाणी हमको सुनने मिल रही है। तो क्यों हमको ऐसे करना है, हमको नहीं करना है, सब समझना है कि ऐसे इससे क्या होगा, इससे जन्म मृत्यु का कष्ट जो है वो चलता रहेगा, बुढ़ापे का कष्ट बढ़ता रहेगा, हमको नहीं चाहिए सब कुछ। कुछ समय के लिए भोग मिलेगा, बाकी बचपन में और बुढ़ापे में और बीच समय में रोग की अवस्था में भोग नहीं कर सकते, और भोग के ज्यादा संतुष्टि मिलना बहुत दूर रहता है। तो जितना मिल रहा है भाग्य के अनुसार भगवान की भक्ति करते हैं उसको स्वीकार करना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है उसके लिए तड़पना नहीं चाहिए, और ये जो भोग प्रवृत्ति का नियम जो है ये ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थ सबको लागू है, क्योंकि सबके जीवन में उनके कर्म के अनुसार भोग आते रहते हैं। ब्रह्मचारियों के अंदर सन्यासी में अंतर होता है, कोई मर्चेंट गाड़ी से घूमता है उनके शिष्यों के साथ में, तो कोई ट्रेन से जाता है या कोई चल के जाता है। हर एक के जीवन में कर्मों के अनुसार भोग आते रहते हैं, दुख आते रहते हैं और सुख भी आते रहते हैं। इनेविटेबल, कोई चेंज नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति को जीवन में अगर भोग युक्त साधन है तो ब्रह्मचारी बनने के बाद भी उसके लिए बहुत सुविधाएं मिलेगी और वो देश में सफर करता रहेगा और उसको सब जो कीर्ति मिलेगी, उसको मान सम्मान मिलेगा, लोग अनुरोध करेंगे, आदर करेंगे उसका, जो भी उसके लिए वो मिलेगा उसको। और उसको बीमार होने से बीमार भी हो जाएगी, कष्ट भी होगा, कोई एक्सीडेंट होना तो एक्सीडेंट भी हो जाएगा, भोग कोई टाल नहीं सकता। लेकिन अगर ये भोग अगर हम भगवान को भूल कर लेना चाहेंगे तो फिर तकलीफ। इसलिए कि भोगों का आना जाना जो कर्मों में चलते रहता है, हमारा केंद्र स्थान भगवान होना चाहिए, हमारा मन जो है भगवान को केंद्र स्थान में रखकर जीवन चलना चाहिए। और ये गृहस्थ ब्रह्मचारी भी इक्वल रूप में अपने के बने, कोई अलग अलग नहीं, नियम जो है तत्व जो है वो तो समान रूप से एप्लीकेबल। इसलिए उनको भगवान के विषय पर, भगवान के चिंतन पर अपने आप को केंद्रित करते हुए इस जीवन को चलाना चाहिए और भगवान के नियमों को पालन करते हुए गुरु महाराज के आदेश के अनुसार जब हम जीवन को चलाएंगे तो उस जीवन में अगर भोग आएंगे, दुख आएंगे, तो उसको स्वीकार करना चाहिए, फिर तो उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। अगर एक भोग मिला तो फिर भोग क्यों नहीं मिला, ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। जो आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। हमारा उद्देश्य उसके लिए नहीं है जीवन का, हमारा उद्देश्य भगवान की भक्ति के लिए। वो भोग जो है वो अपने कर्मों के साथ आते आते रहेंगे, लेकिन भक्ति हमको करनी है, वो हमारे हाथ में, कितना करेंगे उतना लाभ हमको मिलने वाला है और पूरी तरह से हमारे उसके हमारे हाथ में उसका जो फ्रीडम है स्वतंत्रता हमारे हाथ में है कि कितना करना है। तो पर हमेशा कहते थे कि यू कैन बिगन प्योर डिवोटी वन मोमेंट, कौन रोकता है। अगर आपको शुद्ध भक्त बनना है, संत बनना है, तो एक क्षण में आप बन सकते हो। रोकने वाला कौन है उसके लिए, हम खुद ही अपने आप को रोक सकते हैं, लेकिन वो कर्म के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। हमारी इच्छा होती है कि भगवत कृपा प्राप्त होती है, उससे हम तुरंत भगवत भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो हम ही आपको रोक रहे हैं, हम ही अपने आप को प्रगति के लिए प्रवृत्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि ये जीवन जो है इस तरह के कर्म करके अतीत होने के लिए नहीं है। ये मनुष्य जीवन जो है धर्म का पालन करते हुए, धर्म का नियम पालन करते हुए भगवान की ओर प्रगति करने के लिए, और उसके लिए तपस्या आवश्यक है। तपस्या का मतलब क्या होता है, स्वेच्छा से स्वीकार की हुई असुविधा जो भगवान के लिए स्वीकार की जाती है। स्वेच्छा से नंबर वन है, जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से भगवान के लिए, हमारे लिए नहीं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम 10 गेट से विराट तक सफर करते हैं, हम भी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो खुद के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। तपस्या के व्याख्या में उसकी गणना नहीं हो सकती। असुविधा भगवान के लिए और स्वेच्छा से तो ही वो तपस्या के रूप मानी जाएगी, तभी वो आत्मा को शुद्ध करके प्रगति करेगी, प्रगति करवाएगी। ऐसी तपस्या हमको इस जीवन में करना, जानबूझ के समझते हुए बुद्धि के स्तर पर असुविधाओं को स्वीकार करना केवल भगवान के आनंद के लिए। बेफुजूल की असुविधाओं को स्वीकार करके कोई प्रगति नहीं होती है। वो असुविधाएं जो भगवान के लिए ही बनाई गई है, भगवान की प्राप्ति करने के लिए हम स्वीकार करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम यात्रा में चले जाते हैं तो हमारे घर में 2 बेडरूम है, 2 बाथरूम है, गर्म पानी ठंडे पानी का व्यवस्था है और सब कुछ, भोजन की व्यवस्था है, नरम नरम बिस्तर है, प्राइवेसी है, सब कुछ हमारे घर में सुविधा है। यात्रा में नहीं मिलती, यात्रा में कोई खोखला आश्रम में एक रूम मिलता है जो बहुत सारे कॉकरोच रहते हैं, गर्म पानी नहीं मिलता है और इतनी गंदगियाँ होती है, लेकिन हम लोग स्वीकार करते हैं उसको, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सुविधाजनक रूप में रहने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ पर भगवान के स्थानों का दर्शन करने आए हैं, भगवान के भक्तों के साथ में। आप बोले सुबह का नाश्ता 8 बजे नहीं आया, हम तो 8 बजे नाश्ता करने की आदत है, 9:30 बज गए अभी तक यात्रा में नाश्ता नहीं मिले, कथाएँ हो रही है, नहीं हम लोग तैयार है उसके लिए, 9:30 बजे तक बैठने को तैयार है, कथा मिल रही भगवान की, तो हम लोग उसी के लिए यहाँ पर आए। तो किसी उच्च उद्देश्य के लिए हम हमारी रोज की आदतों को छोड़कर जीने के लिए तैयार हैं, इसको तपस्या कहते हैं। अगर हम जा रहे हैं, हमको ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन नहीं मिला, तो चार भक्त जा रहे हैं और 6 लोग का टिकट है जो का रिजर्व है, हम लोग बीच में घुस जाएंगे, पेपर डालकर सो जाएंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे, आप तो घर में तो आराम से सोते हैं, इधर तो नीचे सो रहे हैं पेपर डाल के। लेकिन वो पेपर डाल के नीचे सो रहे हैं ये आपको स्वीकार है, क्योंकि हम धाम में जा रहे हैं, भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान को मिलने जा रहे हैं। तो वो जो असुविधा है, जो स्वेच्छा से स्वीकार की है, भगवान के लिए स्वीकार की है, ऐसी असुविधा हमको आत्मा की उन्नति करने के लिए सहायता करेगी। तो हम ऐसे ही तपस्या कर चर्चा कर रहे हैं जो स्वेच्छा से की गई है, भगवान के लिए की गई, असुविधाओं को स्वीकार किया, तब हमारे जीवन प्रगति होगी। और घर पर भी जब ऐसा होता है, गुरु महाराज की व्यास हो जाए, 5 बजे तक किसी को भोजन नहीं मिल रहा है, तो कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है, तो वो जानते हैं कि गुरु महाराज और सुनने के लिए आए हैं, भोजन करने के लिए तो थोड़ी यहाँ पर आए, भोजन कर तो घर में मिल सकता है, यहाँ पर उसके लिए नहीं आए, तो कौन सा आइटम बनाया हमको, वो नहीं मिला हमको, ये नहीं मिला, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है हम गुरु महाराज का ग्लोरीफाई करने के लिए आए हैं, तो बाकी सारी असुविधाएं हमको मंजूर है कि पंखा नहीं चल रहा है यहाँ पर, गुरु गर्मी हो रही है, 5 बजे तक चल रहा है, लोगों के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब हमारा उद्देश्य जीवन में श्रेष्ठ होता है तो बाकी सारी असुविधाएं नगण्य हो जाती है, कोई नोबडी केयर्स। उस प्रकार की जो असुविधाएं हैं जो धर्म के नियम में लिखी गई है, उनको पालन करना चाहिए, तब जाकर ये जो घिलौनी अवस्था का वर्णन यहाँ पर हो रहा है वैसे हमारी अवस्था नहीं होगी। हम चाहते भी नहीं कि ऐसा भी हो जाए, गलती से भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रभुपाद जी भी 80 वर्ष में प्रार्थना करते थे हाथ जोड़कर, भक्त लोग पूछते थे क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप रो रो कर, कह रहे हैं कि माया के प्रभाव से मुझे बचाओ। प्रभुपाद जी आपको 80 साल नहीं हो चुके, आपको भी क्या माया छुएगी, अरे नहीं, किसी भी अवस्था में, उन्नत अवस्था में, उन्नत अवस्था में, बूढ़ी अवस्था में, जवान अवस्था में, हर समय पे आवा माया जो है वो झपट के पकड़ सकती है। अगर हमने यहाँ का हाथ छोड़ दिया तो तुरंत वो झपट कर पकड़ सकती है। इसलिए उन्होंने एक उदाहरण स्थापन किया, ये समझा कि अभी ये अवस्था मेरी जो है माया प्रूफ हो गई है, माया के प्रभाव से मुक्त है ये अवस्था मेरी, ऐसा नहीं होता है। तो हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं चाहे कितना भी प्रगति कर चुका फिर भी मुझे माया से बचाओ, क्योंकि तो माया से हर व्यक्ति को बचना चाहिए और डरना चाहिए, ऐसे बोलता भी बता। ये जीवन उसी के लिए है, ये समझने के लिए, समझ में आ गया तो फिर आगे का कार्य थोड़ा आसान हो जाएगा, समझ में नहीं आया तो फिर मुश्किल, कुछ बार बार समझाने पर भी हम लोग नहीं कर पाएंगे इसको। जो समझ में आता है उसको, उसको बुद्धि के स्तर पर उसको कन्विंस हो गया हो कि ये ऐसे ऐसे मुझे करना है इसके आगे, तो ही वो कर सकता है। वो जबरदस्ती भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, जबरदस्ती बाकी सारा पढ़ाई कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, घर घर से चला सकते हैं जबरदस्ती, लेकिन भगवान की भक्ति जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब बुद्धि के स्तर पर उसको विश्वास हो गया कि मुझे ये करना है, तो फिर वो अनंत चीजें ऐसे कर सकता है तो पहले वो करने मुमकिन नहीं था उसके लिए। तो हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए भी प्रार्थना करते हैं, इसी जीवन में हम ये सब जो माया मोह का बंधन है, लोग जिसके प्रभाव में हम लोग फंसे हुए हैं, उसमें हम लिप्त ना हो और ऐसे गुजरने अवस्था न प्राप्त करें, माया के प्रभाव से हमेशा मुक्त रहे। तो भगवान का हाथ पकड़ेंगे तो माया आपको नहीं पकड़ सकती, भगवान का हाथ छोड़ देंगे तुरंत माया आपको समझने के लिए उसमें पकड़ लिया हुआ है, ये शक्ति माया है। तो भगवान का हाथ, भगवान का चरण पकड़ के रखना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर माया की शक्ति से अगर बचना है तो इस महामंत्र का सहारा लेना बहुत जरूरी है। जिसके मुख में ये हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र है, उस व्यक्ति के पास में भी माया नहीं घूम सकती है, यमदूत उसके पास नहीं पहुंच सकते हैं, उनका अधिकार नहीं है। इसलिए हमारे जीवन को माया प्रूफ कराना है तो ये हरिनाम का जो है संकीर्तन नाम जो हमेशा करते रहना चाहिए। तुझे रूप चित्ती रहो मुखी तुझे नाम, जब तक हमारे आंखों में भगवान की छवि है तब तक हमारे जिह्वा पर उनका नाम है, कोई माया हमको छू नहीं सकती। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग प्रसाद में बैठे, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है, किसी का कोई टिप्पणी है? अपने पिता ने उसने कहा कि पिताजी आपके शरीर जो है ये आपकी कृपा से मिला हुआ है, तो पिता का ऋण कोई चुका नहीं सकता है, तो अगर मैं आपकी शिक्षा को पूरी करूंगा तो मैं पिता के ऋण से मुक्त हो सकता हूँ, आपका ऋण अदा कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने अपना शरीर जो वर्ण उसको दिया, उसका वर्णन तो आगे भी आता नहीं। प्रभु जी कोई उसके वर्णन आगे आता है? गुरु का क्या हुआ नहीं आता है उसका वर्णन, भागवत में उसका वर्णन नहीं आता है, वहीं समाप्त हो जाता है। नहीं, राज्य प्रदान किया लेकिन उसका आगे क्या हुआ उसका कोई वर्णन नहीं आता। काल का प्रभाव भक्ति करने से उस दृष्टि से कम हो सकता है कि मृत्यु के बाद हम दोबारा जन्म नहीं लेंगे, और जब तक ये जीवन में है तब तक भगवान की भक्ति बनी रहेगी। यही काल का प्रभाव से, काल का प्रभाव मतलब क्या होता है, उनको बुढ़ापा आएगा, बीमारी हो जाएंगी, मृत्यु हो जाएगी, है ना, ये काल का प्रभाव है। हमारी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, हमारा स्मृति नष्ट हो जाएगा, हमारा उत्साह खत्म हो जाएगा, हमारा सुंदर रूप नष्ट हो जाएगा, जो भी कुछ ये काल का प्रभाव है। और जब भक्ति करते हैं भगवान की तो हमारी आत्मा जो है ये काल के प्रभाव में बदते होने वाला जो शरीर है उसके प्रभाव से मुक्त हो जाती है। हमारा जो शरीर के साथ आसक्ति है, जो शरीर काल के प्रभाव में है, जो जीवन काल के प्रभाव में है, उससे जो हमारी आसक्ति है वो भक्ति से नष्ट हो जाती है। इसलिए आप और हम जो है आत्मा के रूप में काल के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, लेकिन शरीर का जो है प्रभाव वैसे रहता है, लेकिन जब शरीर खत्म हो जाता है तो फिर आत्मा क्योंकि उससे विरक्त हो गई है, आसक्ति से मुक्त हो गई है, अगले जन्म में फिर वो शरीर से बदली हो जाएगी। ये काल का प्रभाव नष्ट होने का परिणाम जो है हमारे को ऐसे होता है कि हम लोग भक्ति करने पर जब मृत्यु प्राप्त करेंगे तो फिर दोबारा नहीं लौट के आएंगे, ये उसका प्रभाव है। काल का प्रभाव उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भक्ति करेंगे तो जवान ही रहेंगे, और भक्ति करेंगे तो बुराई नहीं हो जाएंगे और बीमारी नहीं हो जाएंगे, मरेंगे ही नहीं। ये काल का प्रभाव नष्ट करना किसी को मुमकिन नहीं, केवल भगवान जो है उनका शरीर ऐसे रहता है, रोग नहीं होता है, बुढ़ापा नहीं होता है, बीमारी नहीं होती है, उनका ध्यान नहीं होता है हमारे जैसा, ये भगवान है। बाकी सबके लिए ब्रह्मा जी भी इस बंधन में रहते हैं, तो शुद्ध भक्त होने को हरिदास ठाकुर इनका भी शरीर नष्ट हो गया, लेकिन फिर वो उस शरीर से लिप्त नहीं थे, शरीर के बंधन से लिप्त नहीं थे, मतलब लिप्त नहीं थे उसके, शरीर का जो कष्ट था जो मारा जा रहा था तो उनको कुछ कष्ट नहीं हो रहा था, ये मतलब है काल के प्रभाव से मुक्त होना। शरीर को जो कष्ट हो रहा है, जो विधि व्याधि हो रही है, जो बीमारी हो रही है, बुढ़ापा मृत्यु का जो ये कष्ट जो है वो फिर वो आत्मा उससे प्रभावित नहीं होती। शुद्ध भक्त का मतलब क्या है, उसका शरीर वैसे ही हमारे जैसे ही, लेकिन उस शुद्ध भक्त के शरीर में जो भी व्याधियां हो रही है उसका कष्ट पीड़ा जो है वो उसको प्रभावित नहीं करती, उससे वो खुद प्रभावित नहीं होता है, शरीर में दर्द है लेकिन उसको प्रभावित नहीं होता है। जैसे हम रिएक्ट करेंगे वैसे वो रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो शरीर के बंधन से मुक्त हो चुका है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। वो जीवन मुक्तता जो है वो भक्ति का हमारे लिए गिफ्ट है, भक्ति करने पर हम उसको प्राप्त कर सकते, जीवन में रहते हुए भी जीवन के भौतिक प्रभाव से मुक्त रह सकते। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।